आठ आदमी पानी ले रहे हैं, वह जा रहा है। इतने उसने क्या किया, उस बच्चे ने घड़ा ले करके और अपने हाथों से महाप्रभु जी के चरणों में पानी डाल दिया। डालने के बाद में वो अपने हाथ से अंजलि उठाई और उसको पीला। देखा देखिए और पर हुल्लड़ बाजे होते हैं ना भक्तों में, अभी कुछ ऐसे होते हैं बस उद्दीपना हुई और उन लोगों को भी लेना आरम्भ कर दिया। महाप्रभु जी का रूप जरा गंभीर हो गया। ये सब अन्याय। ठाकुर जी के मंदिर में किसी भी का पैर धोना ये उचित है, इसलिए बिगड़ गए। बिगड़ करके स्वरूप दामोदर जी को बुलाया, तुम्हारा गौड़िया ऐसा व्यवहार करता है जो ठाकुर जी के सामने में किसी मनुष्य का पैर खो जाए, नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्वरूप दामोदर जी को दिया और पीठ के ऊपर में और उसका गला पकड़ सकते उसको बाहर कर। जब बाहर करके गए, जब उसको मंदिर से बाहर कर दिया तो उससे बोले, जैसे देखो तुमने काम तो ठीक किया किंतु ठीक होकर के भी दूसरों की शिक्षा की जरूरत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो स्वयं भगवान है इसलिए उनके लिए दोष नहीं, किंतु भविष्य में होगा क्या, नौसिखिए लोग भजन करने वाले हैं और कोई गुरु बनेगा, कोई भगवान भी बन जाएगा, कोई वैष्णव बन जाएगा और मंदिर में ठाकुर जी के सामने ही अपने पैर धोलवाएगा और गौरव बोध करेगा क्या, देखो तो इतने लोग हमारे चरणों को धो करके पी गए हैं और वो जितने धोए और जितने धुलवाए दोनों नरक में गए ये देखा नहीं। इसलिए ये होना तो सहज है किंतु इसका फल बड़ा भयंकर है। इसलिए महाप्रभु जी चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान होने पर भी शिक्षा देना चाहिए। इसलिए मैं तुमको पीछे से ठीक कर दूंगा, तुम अभी बाहर में रहना, फिर मैं आदेश दूंगा तो तुम आ जाओ, ऐसा कह करके और चले आए। महाप्रभु जी को आकर उसे हमने शासन कर दिया, जीवन में अब कभी ऐसा नहीं करेगा, तो अपराध तो छोटा ही है, अब पहली बार थी इसलिए आप उसको क्षमा करो, महाप्रभु आचर जैसी तुम्हारी इच्छा जाओ। और महाप्रभु वो आगे गए और जाकर तो उसको फिर से गए खबरदार ऐसा मत करो, अब फिर उसको काम से लगा दिया। ऐसे ही जो योग्य नहीं है और ऐसे योग्य बनते हैं, गुरु नहीं है गुरु का योग्य बनते हैं, वैष्णव नहीं वैष्णव होने का भी मान रखते हैं, ये सब चीजों से परहेज किया जाए और नहीं तो इसका परिणाम भयंकर होता है। इसके बाद में होने के बाद में पानी से भर गया नालियां, जब खोल दिया पहले तो पानी को भर बंद कर दिया था नाली को, जब खोला था एकदम गंगा की धारा की तरफ में एकदम निकलने लगा पानी, सब भक्त लोग और हरि कीर्तन करने लगे, वहां साफ किया। इसके बाद में महाप्रभु सबको लेकर के नरेंद्र सरोवर के पास में एक नृसिंह जी का मंदिर, उनका भी धोया। ये जगन्नाथ देव बलदेव जी और सुभद्रा जी जब दारू से विग्रह होने जा रहे थे, बनाया जा रहा था, तो सबसे पहले उन्हीं की मूर्ति प्रतिष्ठा की गई और प्रतिष्ठा करने के बाद में तब वो जो पुजारी था वो घर में घुस करके लकड़ी को भीतर ले गया और वहां पर उसको बनाना, इसलिए नृसिंह देव की मान्यता उस समय से वहीं पर। तो नृसिंह देव के मंदिर में गए, उसको धोया और इसके बाद में दोपहर में नरेंद्र सौर में सब लोगों ने स्नान किया। उस समय में नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य में टक्कर लग गई दोनों भक्तों में और स्वरूप दामोदर जी और राय रामानंद वो लोग बालक की तरफ में एक दूसरे पर पानी दे रहे हैं। आज वो गंभीर जनाजिन कहाँ चला गया, जितने गंभीर लोग थे विद्वान लोग बड़े बूढ़े भी आज बालक बन गए। इस तरह से सभी लोग हरि बोल करते हुए और स्नान करके और बैठे, पंक्ति बैठाई हुई। और उधर महाराजा जी ने गोपीनाथ के द्वारा और सब लोगों के द्वारा प्रचुर प्रसाद भेजवाया मंदिर से, तरह तरह के अन्न, दाल, साग, पूरी, कचौड़ी और लड्डू और कितने तरह की मालपुआ इत्यादि महाप्रभु जी ने सबको बैठा करके अपने हाथ से देने लगे। सबका परिवेशन हो गया किंतु अब कोई खाए नहीं। तो सर्प दामोदर जी ने कहा, आप नहीं बैठेंगे तो कोई नहीं खाएंगे, इसलिए आप बैठे। तो महाप्रभु जी अद्वैताचार्य को, नित्यानंद प्रभु जी को, सर्प दामोदर जी इत्यादि को लेकर के बैठे और बाकी जो उनके प्रिय भक्त थे सब लोगों ने मिल करके परिवेशन किया, सब लोगों ने प्रसाद पाया और इसके बाद में कीर्तन करते हुए फिर लोग लौट। इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने ये दिया कि हमारे हृदय में तरह तरह के मैल हैं, प्रतिष्ठा की वासना सबसे अधिक है, काम क्रोध इत्यादि है, छह प्रकार के वेग हैं, काम क्रोध लोभ मान मोह मात्सर्य, इन सबको छोड़ा जाए। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठा छूटना बड़ा भारी मुश्किल है, भावावस्था तक बनी रहती है, स्त्री पुत्र परिवार छोड़ देना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, हम लोग भी छोड़ करके आए हैं, किंतु क्रोध नहीं छूटता, दंभ नहीं छूटता, प्रतिष्ठा की लालसा नहीं छूटती, अर्थ की लिप्सा नहीं छूटती, ये सब यदि चीजें छूटे ना तब हमारा कल्याण, तब भक्ति हुई। जब ये छूट रहा तो समझो कि हमारे हृदय में भक्ति आ रही है, इसलिए ये सब छोड़ने के लिए सब वस्तुओं का संग होना चाहिए, अपने अंदर में दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, मैं छोड़ूंगा, आज से मैं कान पकड़ता हूँ कि ऐसा नहीं करूंगा, जैसे जगाई मधाई ने दिया था आर नारे बाप, ऐसे आज के दिन हम लोग इसी तरह से अब मंदिर हम लोग खोलेंगे, खूब सावधानी से कहीं परस्पर न लगे और मर्यादा रखते हुए और हृदय से ये सब हम निकाल रहे हैं, और भविष्य में यदि किसी से विरोध भी है तो हम बड़े भी हैं तो उसे जाकर के क्षमा मांगे, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, बड़े हैं उनको गले से लगा लें कि तुम्हारा दोस्त हमने कभी दिया ही नहीं, प्रेम पूर्वक हम लोग भजन करें, लोग देखें जो भजन करने वाले कितने आदर्श युक्त होते हैं, कितने नम्र होते हैं, कितने बुरी होते हैं, और नहीं तो लोग हम पर भी हंसेंगे, देखो तो भजन करते हैं और ऐसे जाते हैं, ऐसी बुरी बुरी बातें सीख करके आते हैं, इसलिए इस सब को छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए आज का अनुष्ठान, यदि अनुष्ठान हुआ ठीक, हम लोग आज के अपनी गंदी गंदी चीज़ों को हटा दिया तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, भक्ति भी हमारे हृदय में आएगी, ठाकुर भी हमारे हृदय में।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वृंदारण्यवासिनं
जैसे भक्ति पहले भी थी सतयुग में भी थी और ब्रह्मा जी जब पैदा हुए उस समय में भी भक्ति थी, किंतु महाप्रभु भक्ति में भी नाम प्रेम देकर के जो किया ये नहीं, नाम भी था भगवान का नाम भी था, मंत्र भी ये थे, मंत्र भी ये थे, शास्त्र भी ये थे, किंतु बीच बीच में महापुरुष लोग या भगवान के अवतार आकर के उसमें समय के अनुसार में भावना में परिवर्तन कर, स्थूल चीज में कोई चीज नहीं है, स्थूल जो भावना है और जो भावना है दोनों में महान अंतर है। पहले स्थूल रूप में सब चीजें थी, रथ यात्रा दी थी, गुंडीचा मंदिर भी हो रहा था, सभी कुछ चल रहा था। महाप्रभु जी आए, लोगों में उत्साह भर दिया, प्रेम पूर्वक वही सब होने लगा, भावना बढ़ गई। पहले था जगन्नाथ देव आज ही के दिन में प्रकट हुए, ये भावना आज ही के दिन में जगत में प्रकाश हुए, और वहां पर रहते रहते उनका मन उग जाता है, इसलिए वर्ष के एक दिन में लक्ष्मी से बिना कहे हुए सुभद्रा जी और बलदेव जी को लेकर के निकल जाते, स्नान होता है, स्नान करने के बाद में उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उसमें में 15 दिन या कितना दिन
15 दिन
वो दर्शन नहीं देते, उसको अनवसर काल करते। अब इसके बाद में आज जो दर्शन हुआ होगा वो पूर्ण यौवन का हुआ, आज ही उनका दर्शन 15 दिन के बाद में खुला होता है, नव यौवन उनका होता है, दर्शन सब लोग दर्शन करने आए और दर्शन करने कल ही वो निकलेंगे थोड़ा सा घूमने के लिए शहर रहते 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 महल में मन नहीं लग रहा। लक्ष्मी जी को कह देते मैं दो एक दिन में घूम करके आ जाए, और ये कह करके जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को अपने सुभद्रा जी को और बलदेव को साथ लेकर के चल। ये साधारण जिस दिन ठाकुर जी का जन्म हुआ था, आदि भाव हुआ था, उसी दिन की ये बात। और फिर वहाँ 9 दिन जाकर के फिर बस पहले ये था, राजा महाराजा हाथियों के द्वारा लोगों के द्वारा कटवा करके ले जाते। वो उस दिन एक उत्साह रहता था, उस दिन महाप्रभु जी एक खंडारा को एक इधर आओ इधर में ये हो गया। द्वारका आए हैं, अब द्वारका में रहते बहुत दिन हो गया है, कृष्ण की इच्छा है, इसलिए वो उनकी इच्छा है वो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वृंदा। किंतु उनको बतलाते नहीं हैं लक्ष्मी जी, नहीं तो जाने नहीं देंगे। लक्ष्मी जी कौन है? सप्तभामा रुक्मणी प्रभृति है, नहीं जानेंगे, इसलिए बतलाया नहीं। कल जब मैं अभी बलदेव जी को भैया के साथ में और छोटी बहन को सुभद्रा जी के साथ में जाऊँ घरने की कोई बात, इसलिए उनको ठाकुर करके इनको ले और ले करके चल पड़े। बोले जब अभी मैं घूम करके बन में आता हूँ, आ चले आए वृंदावन। महाप्रभु जी ने एक भावना बदल दी, हम लोग 7-9 दिन होगा उसमें हम लोग इसका विस्तृत में वर्णन करेंगे। एक दिन पहले होता है जब जाएंगे तो राजा महाराजा ने तैयारी किया कि उस मंदिर को जो पड़ा हुआ है वीरान 1 वर्ष तक और उसको साफ करना चाहिए, इसलिए साफ करने के लिए, सफेदी करने के लिए, सब चीज प्रस्तुति करने के लिए सब लोगों को भेज, हजारों नौकर चाकर चले जाते थे और उसको साफ सुथरा बना। महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं, ठाकुर जी का मंदिर नौकरों के द्वारा नहीं होगा, ये खुद हम लोग साफ। लोग घर में ठाकुर जी की मूर्ति स्थापना करते हैं और एक नौकर रख देते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण नौकर रख दिया, जैसे तुमको हम महीने में 30 रुपया देंगे और केला चावल जो कुछ होगा वो सब तुमको कच्चा मिल जाएगा, तुम भोग लगा देना और हम लोग को फुर्सत नहीं है काम में सब समझ, इसलिए वो नौकर पूजा कर देता है, उसको पैसा दे दिया वो चला जाता है। पूजा किया भी कि नहीं किया, लोगों को दिखलाने के लिए घंटा बजा दिया और चावल और सब्जी और सब फल बांध लिए और चल, इसलिए इसको कहते हैं पृथक पूजा, नौकरों के द्वारा पूजा, इसे ठाकुर जी की पूजा नहीं होती। महाराज अम्बरीश ने इसीलिए नौकरों के द्वारा नहीं, नौकरों के द्वारा राज्य संचालन कराते थे, सेनापति के द्वारा सेनाओं को ठीक रखना और बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा राज्य का संचालन, और इस प्रकार से राज्य संचालन कराते थे उनके ऊपर। और खुद क्या करते? ठाकुर जी का मंदिर साफ करना, अर्चन करना, वंदना करना, स्तुति करना, भोग राग लगाना, ये अपने हाथों से करना, स्वयं एकादशी इत्यादि का व्रत करना, पैसा देकर के दिया नहीं। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा पूजा नौकरों के द्वारा नहीं हुई, ये तो भावना है, भावना के द्वारा स्वयं साधक करें, इसलिए उन्होंने कहा। तथा पुरोहित राजा को उनके पुरोहित ले जाकर के बताया, पुरोहित और गुरु दोनों थे काशी मिश्र, काशी मिश्र से महाप्रभु जी ने कहा, उन्होंने जाकर राजा से, राजा इसकी व्यवस्था कर दी और उनको सगे धोने के लिए खड़े और साफ करने के लिए मंदिर दे दिया झाड़ू, झाड़ू नहीं सम्मार्जन, सप्त मार्जन, सप्त माने निर्मल करने वाली जो झाड़ू, इसलिए सम्मार्जन ही कहते हैं। जैसे कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज जी दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कर करके सुयोधन, दुशासन नहीं सुशासन करते, ऐसे सम्मार्जन शब्द का प्रयोग हुआ, सम्मार्जन उनके साथ में दिया। महाप्रभु सबको तिलक लगा करके सबको और कीर्तन के साथ में वहां पर चले।
वैष्णव के हाथों में उस दिन माला नहीं, क्या थी?
झाड़ू।
और एक हाथ में
कलश।
और कीर्तन करते हुए, कुछ लोग कीर्तन करते जा रहे हैं, कुछ मृदंग बजा रहे हैं, करताल भी बज रहा है, सभी कुछ कांसर भी बज रहा है, और कीर्तन करते करते चले। कीर्तन क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम
हरे हरे, नमः कृष्ण यादवाय यादवाय माधवाय कृष्ण। ये सब जय जगन्नाथ जी की जय, बलदेव जी की जय, सुभद्रा जी की जय, बस यही सब कीर्तन। कीर्तन करते करते वहां पर पहुंचे लोग, और महाप्रभु जी ने गलों में भी भक्त होकर के लाइन पंक्ति स्थिर कर दी। बीच में वो हो गए, झाड़ू पहले दिया, इधर कीर्तन चल रहा है, उधर में मृदंग भी बज रहा है, झांझर भी कुछ दो एक आदमी बजा रहे हैं, और सब लोग मन ही मन में कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण करते हुए, और कीर्तन करते भी ये सब। एक बार झाड़ू दिया, दूसरी बार झाड़ू, एक बार झाड़ू देने में कुछ आया, कुछ नहीं भी आया, फूल फूल और ऐसी चीजें नहीं आई, इसलिए दोबारा झाड़ू दिया। महाप्रभु जी ने देखा कि कुछ इसमें कामचोर भी है, तो कामचोरों के लिए क्या क्या फर्शना, मीठी फर्शना दे, कहते हैं आपने बहुत परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया, मैंने देखा, कह दिया कि सभी एकत्र करके लाओ, और जिसका अधिक होगा उसके लिए प्रशंसा करते हैं, वाह बहुत आज, जो जिसका कम है उसको कहते हैं वाह वाह तुमने तो बहुत सुंदर किया, उनको भी ऐसा ही सिखाओ, और वो लज्जित हो जाता है। इस प्रकार मीठी हर्षना के द्वारा उसको भी काम में लगा, परिश्रम। साधन भजन बेमन से करने से नहीं होगा, साधन भजन कैसे करना पड़ेगा? मन के साथ में, सावधानी के साथ में साधन भजन करना, हुआ हुआ नहीं हुआ ये सब नहीं, इसलिए साधन भजन करने में चित्त संयोग पूर्वक अच्छी तरह से। महाप्रभु जी ने इस प्रकार से दो बार झाड़ू देकर के सबको साफ किया, इसके बाद आदेश दिया, पानी लेने वाले हजारों लोग खड़ों में पानी भर करके इंद्र दुम्न सरोवर से ला रहे हैं, और उसको खुलाया जा रहा है। महाप्रभु जी, नित्यानंद प्रभु और द्वैताचार्य
स्वरूप दामोदर,
स्वरूप दामोदर राय रामानंद परमानंद पुरी इत्यादि जो जितने हैं ये गुजन लोग हैं, वो लोग घड़े में पानी ले रहे हैं, हाथों में पहला जो घड़ा पानी आया वो धीरे धीरे हाथों में आते आते महाप्रभु जी के पास में, और महाप्रभु जी ने झाड़ू किसे आरम्भ किया?
महाप्रभु,
और पानी भी देना आरम्भ किया महाप्रभु, सब लोग भक्त लोग देने। इस प्रकार से होना आरम्भ, खड़े आ रहे हैं जा रहे हैं, जब भर करके एक आदमी को देता है तो कहता है कृष्ण कृष्ण, और वो कृष्ण कृष्ण कह करके देता है, फिर वो दूसरों को कृष्ण कृष्ण कहता है, वो दूसरे को देता है, ऐसे करते हुए क्षण मात्र में एकदम मंदिर में वहीं से हाथों हाथ पहुंच जाता है, और सभी लोग एकदम वातावरण कृष्णमय हो गया। इसमें कितने खड़े फूट रहे हैं, कितने नए आ रहे हैं, अब कृष्ण नाम कृष्ण कृष्ण सब समय चल रहा है, ऊपर नीचे सबको एकदम खोया, धोकर के एकदम मन जैसा निर्मल बनाया। कैसा मन? निग्रहित मन, भक्ति के द्वारा पवित्र, भक्ति योगेन मनसि सम्यक पढ़िते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच जदा अपाश्य। हृदय एकदम निर्मल हो गया, साधुओं का चित्त जैसे निर्मल होता है ऐसे चित्त को निर्मल कर दिया, उसमें भगवान को बैठाया जाए, जिसका चित्त निर्मल नहीं है उसमें भगवान नहीं बैठेंगे, इसलिए महाप्रभु जी शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर जब इस प्रकार से किया, इतने में एक कोई उड़िया या यही
गौड़िया
एक वैष्णव ने महाप्रभु जी के चरणों में एक घड़ा पानी दे करके और झट हाथ से उठा करके पीने लगे। महाप्रभु तत्ना तुम करो पिया निषेध, ऐसा मत करो, सर्व गमादर को जो सबके इंचार्ज हैं उनको बुलाया, तुम्हारा गौड़िया इस प्रकार से व्यवहार करता है, ठाकुर जी के सामने में दूसरों का पैर बुलाता है, जिसका धोता है वो, जो धोता है दोनों दोनों नरक जाएंगे। उन्होंने उसको कुछ थप्पड़ मार करके वहां से निकाल दिया और वह बाहर में जाकर के शांतानंद जी, अच्छा तुम अभी ठहरो, मैं तुमको फिर बुला लूंगा, तुम्हारा काम ये अच्छा है किंतु होने पर भी लोगों के लिए शिक्षा प्रद नहीं है, क्यों ऐसा सभी करने लगते हैं, सब लोग मंदिर में धुलाने लगेंगे पैर। आजकल ऐसे ही हो एक चल रही है, मैं गुरु हूँ, हम पूजा हम सबका लेंगे, इसलिए उनको मनाए, पीछे से उनको महाप्रभु से आकर के फिर उसकी बड़ी प्रशंसा की और फिर उनका मन फिर गया, फिर उसको खुलाया। इस तरह से आत्मसंशोधन कराया। यहाँ पर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी गुंडिता मर्दन लीला का रहस्य बतला रहे करें हैं। जगत को ये चैतन्य महापुरुष शिक्षा दे गया, पहले ये सब नहीं था, नौकरों से जाकर के कोई अफसर जाकर के और साफ करवा ले, जैसे आजकल इंडाउमेंट के द्वारा जितने मंदिर हैं राजस्थान में और दक्षिण में भी ले लिए गए, और लेकर के वहाँ क्या होता है, कबूतर रहते हैं,
चमगीदड़
रहते हैं, दुर्गम के मारे में कोई जा नहीं सकता, यहाँ पर पहले हजारों आदमी जाते थे, लाखों आदमियों की भीड़ होती थी, और कितना वैभव था। एक तांजौर में है मंदिर, तांजौर वो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर, उसकी शिखर पर एक कितना
एक
पत्थर कितना 350 मन का पत्थर कैसे ऊपर गया, आज तक विज्ञान जो भी नहीं बतला सकता कि कैसे गया, और वहाँ वो रखा गया, उसमें 1008 शिवलिंग है, जो बाहर वाला है, भीतर वाला मूल मंदिर वो कम से कम तो उसका डायमीटर होगा 15-16 मीटर डायमीटर और ऊंचाई इतना, और किस चीज का, कृष्ण पत्थर शिवलिंग, ऐसा भारत बस में इतना विशाल नहीं है, और चारों तरफ में 1008 शिवलिंग, अद्भुत अद्भुत। और उस समय में जिस समय में राजा था वो जिसने बनाया, उसमें लाखों नौकर चाकर थे, पुजारी कितने थे मैडम, 1000 तो 8 यही, और डबल कम से कम होंगे, तो डबल होंगे तो पुजारी ही कितने होंगे,
2000
मूल मंदिर में कितने पुजारी होंगे, ऐसी उनकी पूजा होती है। हम लोग भी जब गए हैं गुरु जी के साथ में पहली बार, उसका वैभव ऐसा, बड़े बड़े विद्वान लोग मंत्र से उच्चारण करते हुए भस्म रामाए हुए, इतने उनके हाथ इतने मोटे मोटे लंबे चौड़े, वेदों का उच्चारण करके और शंकर जी को सेवा कर विभूति दे रहे हैं, गुरु जी को गुरु नहीं आया तो गुरु जी को दो चार गाली सुना दी, उन लोगों गाली शुरू करके हम लोग लौट आए कि तुम उनकी विभूति नहीं लिया, भाई ये तो बड़े भारी नास्तिक हैं, शिव जी की विभूति नहीं लेते हैं, भस्म नहीं लेते हैं, बल्कि तर्क वितर्क करना चाहे, तो हम लोगों ने देखा कि इन लोगों से यहाँ तक तर्क वितर्क क्या, बस कुछ नहीं अधिक नहीं कहा, पर जो ये वैष्णव लोग हैं ये नहीं लेंगे, बस इतना ही होकर के चले, कितना वैभव। और अभी 10-12 वर्ष पीछे गया तो क्या देखा, किसी शिवलिंग की पूजा नहीं होती, कोई दर्शन करने के लिए जाते हैं पर्यटन, पर्यटक जो होते हैं पर्यटक विदेश से ऐसे ऐसे देखते हैं, बस बेलपत्र भी नहीं चढ़ता ठाकुर जी, मस्क से कभी कभी कोई नहीं जाता, चमगादड़ है केवल उनका दुर्गंध, और चमगादड़ और कबूतर बस दुर्गंध, बस कोई व्यवस्था नहीं, ये गवर्नमेंट ने ली, यदि गवर्नमेंट नहीं लेती तो कुछ कुछ होता रहता, इसी तरह से ये सब मंदिरों की स्थिति है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा मंदिर हम साफ करेंगे, तो वो साफ करने के लिए बतला रहे हैं ठाकुर जी मंदिर में हैं। आजकल ये एक तरह से चल रहा है कि नीच जाति के लोग हैं, शूद्र इत्यादि, जाति पाति के बिना सभी लोग उस मंदिर में पूजा करते। तो जो मूर्ति को मानते नहीं है वो पूजा क्या करेंगे, वो तो बराबरी करने के लिए एक आना चाहते हैं, अंदर से पूजा करना चाहते हैं, पूजा जो करने वाला है उसके लिए किसी को मना नहीं है, सभी पूजा कर सकते, सभी का पूजा करने में अधिकार है। किंतु अपने हृदय को तो वैसा बनाओ, पहले के ब्राह्मण लोग भी ऐसे होते थे, भक्त लोग ऐसे होते थे, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सबको दूर करके हृदय को निर्मल बना करके और ठाकुर जी की सेवा। आजकल हम जैसे हैं वैसे रहेंगे जितने ठाकुर जी की पूजा करें, क्या पूजा करेंगे, उनको एक जड़ पत्थर की तरफ में दिखते हैं और जड़ पत्थर ही उनके लिए है और ये भावना पथ से उसके अंदर में देखते हैं, इसलिए उनको भगवान के रूप में देखते हैं, इसलिए ये लोग जैसी सेवा करते हैं। उनसे ठाकुर जी बोलेंगे, बातचीत करेंगे, सब कुछ करते हैं, उन लोगों से थोड़े बातचीत करेंगे। ये कह रहे हैं महाप्रभु जी ने एक लीला का प्रदर्शन किया जो जीवों के लिए शिक्षणीय है। कोई कोई सौभाग्यवान जी संसार के ये सब अवस्थाओं को देख करके देखता कि संसार में सुख नहीं है, संसार में त्रिता और मृत्यु और संभावी है, कितना भी कोई प्रयत्न करो उतना ही दलदल में फंसते जाते हैं। इसलिए भगवान को अपने हृदय में सिंहासन पर बैठाना बड़ा भारी कठिन है। तो जब तक हृदय सिंहासन नहीं साफ होगा तो उसमें बैठा नहीं सकते। इसी के लिए कह रहे हैं हृदय को निर्मल करना पहला काम। कैसे निर्मल होगा हृदय में यह मैल क्या है, मंदिर में तो मैल है, धूल रेती कंकड़ त्रीन और कितनी तरह की गंदगी है, इसको साफ करना सहज है किंतु हृदय को निर्मल करना ये बड़ा कठिन है। झाड़ू इस मंदिर में चल जाएगा किंतु इसके अंदर में झाड़ू ये झाड़ू नहीं जाएगा। कहते हैं ये क्या चीज है मैल, अन्नाभिलाष, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त जितनी प्रकार की कामनाएं संसार में हैं भोग की, वो सब कामनाएं अन्नाभिलाष कहलाती है। यही हृदय में ये मैल, अन्नाभिलाष के कारण आसक्ति होती है, ये आसक्ति ही हम इतना प्रबल ये बंधन है, इसको छोड़ना बड़ा भारी कठिन। भगवान ने कैसे बनाया, एक कुतिया का कुत्ते के प्रति और कुत्ते का कुतिया के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, एक सुअर का सुअरी और उसके बच्चों के प्रति, देखो कैसा दिया है आसक्ति। एक आदमी एक सुअरी को सुअर को ले जाना चाहता है कहीं, ऐसे नहीं जाएगा, तो उसके बच्चे को पकड़ लिया और पकड़ करके गोदी में पकड़ करके और चलने लगा और सुअरी क्या करी, कैसी एक आसक्ति, सब संसार इसी आसक्ति में बंधा हुआ है, प्रभु ने बांध रखा। इसी आसक्ति के कारण हम लोग भगवान से विमुक्त हो रहे हैं और इसीलिए माया हमको कष्ट देती है। माया माने जो नहीं है वही माया कष्ट देती है, इसका अर्थ नहीं ये है कोई चीज एक है जो हमको कष्ट दे रही, ऐसा मत समझिए। ये मेरी आसक्ति ही मुझे ये बांध रही है, कष्ट दे रही है। कौन चीज हमको बांधता है, आसक्ति के बंधन में कैसे बढ़े, भगवान ने एक माया को निर्माण कर दिया और वो हमको आसक्ति लगा करके संसार में बांध रही है, ऐसा मत सोचिए। आसक्ति कहां से आई, आसक्ति भगवान ने पैदा की या हमने पैदा की, हमारी वृत्ति में भी आसक्ति है। एक आदमी चोर हो गया, ये चोरी किसने सिखलाया, उसकी प्रवृत्ति जन्मजात संस्कार के वजह से ये सब है। इसलिए पहले संस्कार करने के लिए
समाज में वैसे नियम थे, ऐसे स्कूल थे, गुरु थे, सत्संग था, माता पिता ऐसे होते थे, इसलिए उसका संस्कार पड़ता था। आज माता पिता ही चोर हैं, घूसखोर हैं, पाप पूर्ण उनका विचार है, तो संतान को वो कैसे आशा कर सकते हैं कि अच्छे लड़के हों। मान लें कि माता पिता अच्छे भी हों, स्कूल कॉलेज में भेजते हैं, अब लड़का वहाँ पर क्या कर रहा है ये माता पिता को मालूम है, इनके साथ में तो रहते हैं कोई दो एक घंटे, बाकी रहते हैं बाहर की सोसाइटी में, बाहर की सोसाइटी का भी असर पड़ता है, इसलिए पिता माता को मालूम नहीं ये क्या कर रहा है और वहाँ पर कैसे कैसे अपराध करता है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ये सब स्वतंत्रता के कारण अन्याभिलाषिता ये है, अन्याभिलाषिता। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान, कर्म, जो तपस्या, जितने भी भगवान के सेवा के अतिरिक्त जितनी भी चीजें हैं, ये अन्याभिलाष, ये सब हमारे हृदय में लय के समान। भगवान भक्ति के अतिरिक्त और किसी चीज से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं। अन्याभिलाष किसको कहते हैं? जितने दिन, जितने समय तक इस जगत में रहूंगा, हमारी इंद्रियों को सुख हो, ऐसे चीज को देखूंगा जो आंखें प्रसन्न हो जाए, खिल जाए, सुंदर सुंदर मधुर मधुर वाणी सुनेंगे, भोजन करने के लिए अच्छे अच्छे चीजें मिले, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा लगने के लिए जो कुछ मन मांग रहा है वो सभी को हम देंगे। भगवान की याद नहीं, बस अपने सेवा के लिए सब कुछ करने का नाम ये अन्याभिलाष है। यही हमारा सबसे बड़ा महल है हृदय का। इसको कंटक में तीर्ण भी कहा जा सकता है। कंटक में तीर्ण क्या, चलते हैं कभी तीर्ण ऐसे होते हैं जो पैर में लग जाते हैं, चुभ जाते हैं, ये इसे भगवान को भी कष्ट होता है। जैसे कर्म चेष्टा है, कर्म चेष्टा मैंने क्या, जोग है, तपस्या है, दान है, ये सब दान और यज्ञ किसके लिए करते हैं, किस लिए? एक नील राजा थे, रोज लाखों करोड़ों गायों का दान करते, अंत में एक दिन एक गाय भग गई और जिसको दान कर दिया था, और एक नई जो दान दिए जाने वाली गाय है उसमें मिल गई। तो जिसको जिसकी गाय भग गई थी वह गाय को खोज रहा था, तो वो जिस दल वो राजा को दिया, राजा ने फिर उसको दोबारा दान कर दिया। जाते समय में उसने ब्राह्मण ने पकड़ लिया, ये गाय तो मेरी है, राजा ने दान दिया था। उन्हें कहे हमको ये दान दिया, वो कहे हमको दान दिया। राजा के पास में पहुंचे, किसको दान दिया आपने? अब दान जो दिया सो तो दिया ही, जिसको दोनों को मैंने दान दिया, अब एक बात करो, झगड़ा मत करो, मेरी ही दान को दी हुई है, इसके बदले में वैसे ये गाय ले लो, उससे भी अधिक दूध वाली नहीं, हमको तो वही गाय। अच्छा, इसके लिए 10 करोड़ रुपए ले लो, राज्य ले लो, नहीं हमको वही गाय चाहिए। दोनों उस पर जीत में अड़ गए। हमने कहा जा, दोनों माने नहीं, बहुत कुछ कहा समझाया नहीं माने, अब दोनों के एक साथ में कैसे गाय देंगे? तो उन दोनों ने कहा, जे तुम गिरगिट है, हमको दान दिया और फिर दान नहीं दिया, जाओ तुम गिरगिट हो जाओ, बस गिरगिट हो। बतलाओ तो कोटि कोटि जिसके तारे गिने जाते हैं आकाश के, गाय नहीं गिनी जा सकती, और आज उसको ये दुर्भाग्य और ये गिरगिट बना। गाय किस लिए दान कर रहा था ये बतलाओ तो, हमको कभी दूध की कमी ना हो, ये मूल में अभिप्राय है, धन धान्य से पूर्ण रहूं। गायों का दान बहुत ही महत्व रखता है,
किंतु देखो ये हो गया डर। और उन्होंने एक वैष्णव को गीता भागवत लिख करके और उनको दान दिया। उसका ये फल हुआ कि कृष्ण का दर्शन हो गया गिरगिट में और कृष्ण ने उस गिरगिट का उद्धार कर दिया। ये भक्ति में और उसमें ये अंतर है। कर्म के द्वारा भगवान किसी भी हालत में प्रसन्न है। कर्म किसको कहते हैं? अपने लिए जो कुछ किया जाता है उसका नाम है कर्म। जब निरुद्देश्य होकर के किसी के लिए काम नहीं करते हैं तो उसको कहते हैं निष्काम, और जब भगवान के लिए करते हैं तो इसका नाम है भगवत। एक ही चीज जो भगवान के लिए करते हैं उसे भगवान प्रसन्न होते हैं। निष्काम होकर के करते हैं तो भगवान कहते हैं हमको ऐसे कर्म की क्या जरूरत है। निष्काम होकर के कर रहा है, बेमन से दे रहा है। कोई बेमन से दे रहा है किसी भूख जो कि जिसको भूख नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, और अनादर के साथ में उसको कोई देगा तो वो लेगा क्या जरूरत है? नहीं लेगा। और अपने लिए करके यदि भगवान को कोई दान ले तो भगवान किसी का दान लेंगे उनको क्या कमी है? नहीं। इसलिए इन कर्मों से भगवान प्रसन्न नहीं है। जो आत्मसमर्पण करके भगवान के लिए करता है उसको वो ग्रहण करते हैं। इसलिए ज्ञान तपस्या ये सभी कर्म हैं, सब कर्म कहलाते हैं। दूसरों का तो उपकार होता है किंतु भगवान से प्रसन्न नहीं होते। ये सब है वासनाएं हैं, धूल है। गीता में बतलाया काम एष क्रोध एष
रजोगुण समुद्र
भवा
महासनो
महापापमा। पहले क्या होता है? कामना होती है। कामना से उसको कार्य में परिणत करता है, और यदि परिणत होने में कोई बाधा होती है तो क्रोध होता है। क्रोध होने से बुद्धि मोहित हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। अब बुद्धि भ्रष्ट होने पर प्रणश्य। इसलिए कामना ही नहीं की जाए। कोई भी कामना मत कर, बस एक कामना हो, भगवान की भक्ति। ये कामना कहलाती नहीं है। इसके द्वारा भगवान प्रसन्न होकर के बिना चाहे सभी कुछ उसको दे देते हैं। इसलिए कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तपस्या के द्वारा भगवान प्रसन्न नहीं, ध्यान के द्वारा भी नहीं। ये सब तीन धूल बालू रेती बड़े बड़े कंकड़ ये सब घास ये सब है। अब ये कैसे दूर हो? आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज से मैं पाप नहीं करूंगा, मैं कोई कामना नहीं करूंगा भगवान की सेवा के अतिरिक्त। प्रतिज्ञा करने से हो जाएगा कि नहीं? खूब दृढ़ता से नहीं होगा ही नहीं। कैसे होगा? इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रभुपाद कहते हैं एकमात्र केवल भक्ति के द्वारा ही जीव के समस्त असुविधा दूर हो सकती। केवला भक्ति, केवला भक्ति क्या है? भगवान के प्रसन्न करने के लिए ही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शक आत्मन। इसके द्वारा ये केवला भक्ति है, इसके द्वारा होगा। किंतु उसमें मन की दृढ़ता भी चाहिए। मन की दृढ़ता नहीं होगी या करेंगे और संसारिक कामनाएं वासना करेंगे तो चित्त नहीं भव होगा। साधुओं के संग में रहेंगे, सुनेंगे ये सब चीज, पहले श्रवण करेंगे तब फिर कीर्तन करेंगे, तब हृदय में बल आएगा, उस बल के द्वारा। जब ये दूर हो जाए, कैसे दूर होगा? भक्ति के द्वारा, बिना भक्ति के नहीं होगा। भक्ति करते जाएंगे जितना ही भक्ति होती जाएगी हृदय निर्मल होगा। विशेष करके एक आदमी बहुत झगड़ालू है, बदमाश आदमी, कह जा तुम दिन भर हरि नाम करो तो हरे कृष्ण हरे, देखो बातचीत मत करना, तो दिन भर हरि नाम करेगा तो झगड़ा करने का मौका मिला, अपने आप दूर हो गया ना। अच्छा आज दिन भर तुम यहीं पर खाना पीना सब हम देंगे, बस यहीं पर बैठ करके हरि कथा सुना और कोई काम नहीं करना, और बोलना मत, हरे कृष्ण मुख से कहते रहना और कान से कथा सुनना, आज तुमको कहीं दिन भर नहीं जाने देंगे। वो दिन भर यहाँ पर बैठा रहा, हरिनाम करता रहा, भूख लगी प्रसाद पाया, फिर यहाँ पर बैठ गया, सोया भी नहीं, कुछ नहीं करता रहा। अब उसको लोगों से लड़ाई झगड़ा मारपीट करने का समय मिला, इस तरह से हो जाता है। ऐसा यदि हो तो दमन हो जाएगा, और नहीं हरिनाम कर रहे हैं उस पर विश्वास नहीं है और हरिनाम छोड़ करके फिर कामना वासना में लग जाते हैं तो तब फिर वो हो जाएगा। इसलिए कहते हैं भक्ते हृदय सदा गोविंद कृष्ण, कोई कामना नहीं करते हैं। इसलिए एक है मुक्ति, मुक्ति मैंने क्या, मुक्ति भी ऐसे नहीं होती, कोई कामना नहीं रहेगी तभी मुक्ति होगी, मुक्ति और दूसरे उपाय से नहीं होगी, पहले कोई कामना नहीं, चित्त निर्मल होगा उसके द्वारा ब्रह्म मैं ब्रह्म हूं तत्तम, तब जाकर के निर्विशेष मुक्ति जो होती है जो कहा जाता है कोटि कोटि जन्म में होता है। और वही कोई व्यक्ति भक्ति इतना भी यदि ग्रहण कर ले बस उसी के द्वारा सहज रूप में मुक्ति हो जाएगी, किंतु भक्ति का यह गौण फल है, मुख्य फल नहीं है। अच्छा भक्ति मुक्ति जो है ये कंकड़ पत्थर क्यों कही गई, इसका कारण क्या, यदि मान लिया कोई राजा है और दूसरा कोई व्यक्ति जाकर के कहा मैं राजा हूं, उसका एक नौकर, राजा को आनंद होगा तो ना क्या करेंगे, कहा इसको पकड़ लो जेल में दे दो। उसी तरह से भगवान